प्रातः क्लास चल रहा था, अठारह तीन तिरसठ सोमवार को मध्यादि में वाणी चल रही थी। जो रिलीजन को नहीं मानते हैं कहते हैं कि हम अपने रिलीजन को जानते ही नहीं हैं, तो फिर मान के क्या करें। ऑटोमेटिकली ऐसे निकल पड़ा है और बरोबर कोई भी नहीं जानते हैं। सब समझते हैं कि हिंदू धर्म आदि सनातन धर्म है। अभी देवता धर्म कहे तो पुरानी बात भी याद आवे। समझे कि बहुत अच्छा था, अभी हिंदुस्तान को कोई अच्छा थोड़े ही कहेंगे। ये भी एक घमंड है, इसको भी कहा जाता है जैसे देह अभिमान। भारत के नाम में बस ये सबसे अच्छा है, नहीं तो वास्तव में इस समय बिल्कुल ही सबसे कमगाल है। और हर बात में कंगाल ही कंगाल, रोगी हैं कंगाल 100% हर एक बात में, क्योंकि इनकी महिमा 100% ऊंची थी। तो फिर आज के इस भारत की महिमा 100% नीची। अब जब 100% नीची है तो ये बेचारे न जानने के कारण कह देते हैं कि हिंदुस्तान हमारा एक तरफ। यूं गीत गाएंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दूसरा फिर वो गाएंगे कि हमारा क्या हाल हुआ है, भारत का क्या हाल हुआ है। फलाना ये कहते हैं और ये कहते हैं कि यहां तो पहले बहुत अच्छे रहते थे, अभी देखो इन कहने वालों का कोई ठिकाना थोड़े ही है। वास्तव में इनमें कोई ताकत तो है नहीं, ये तो सब बात का लोन लेते हैं। कोई वक्त में तकलीफ होगी तो कहां ना कहां से लश्कर भी मंगावेंगे और मंगाते रहते हैं। एरोप्लेन में मिलिट्री भी मंगा लेंगे, क्योंकि तरस पड़ता है ना सबको भारत के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत पहले बहुत अच्छा था, अब ये भारत कंगाल बना है। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे थे, अभी कंगाल बने हैं, बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट बने हैं। ये भारत वास्तव में इस समय अनाथ आश्रम है। کہ جس جگہ میں غریب رہتے ہیں انہوں کو دان دیا جاتا ہے. تو اناتھ معنی آرفن, اناتھ کا اکشی اصلی اکشر ہے اناتھ یعنی آرفن. ناستک سمجھو, یہ تو ہم جانتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں جانتے ہیں. ہمارے میں بھی جو سینسیبل ہیں سروسیبل بچے ہیں جن میں دماغ بھرپور ہے وہ سمجھتے ہیں, ان کو خوشی بھی رہتی ہے اور کسی کو سمجھائے بھی سکتے ہیں. باقی بیچاروں کو للو پنجو کو تو کچھ بھی پتا نہیں پڑتا. باپ تو ایسے ہی کہیں گے جیسے تمہاری مما بابا جس کو برہما جگت پتا اور جگدمبا کہتی ہو, وہ پرسارتھ کر کے ہمارے سے ورثہ لے رہی ہے. تم ان کو فالو کرو نا, کہ جو کہا جاتا ہے فالو فادر اینڈ فالو مدر, تو اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ میرے کو تو فالو نہیں کرنا ہے, میرے سے تو تم کو راجا ہی لینی ہے. تو میری بات کو فالو کرنا ہے, میرے کو فالو کریں گے تو میرے پاس چلے آئیں گے. ابھی بتا دیتے ہیں میں آیا ہوں گائیڈ بن کر کے آیا ہوں. سو تو تم سب کو پیور کر کے آگ میں بھی جلائے کر کے تمہارا سارا شریر کا بھان ختم کرائے کر شریر کو ہی ختم کرا کے میں لے جاؤں گا. پرنتو کس لیے لے جاؤں گا؟ بھوشیہ سرشتی کا مالک بننے کے لیے, سورگ کا مالک بننے کے لیے. فالو فادر اینڈ مدر, جیسے وہ پرسارتھ کرتے ہیں ویسے ہی تم کو بھی پرسارتھ کرنا ہے. تم بھی دھارن کر کے ان جیسا بنو. 18:363 کی وانی کا چھٹا پیج. باپ تو ایسے ہی کہیں گے نا, بچوں کو ہی کہیں گے. دیکھو یہ باپ کہتے ہیں بے حد کا باپ کہ تم ایسے بنو, یوگ رکھو اور میری مت پر چلو, وفادار بنو فرمان بردار بنو. اگر نہیں بنیں گے تو پھر سجائیں بھی کھائیں گے. دیکھو کتنا اچھی ریتے کتنا صاف بات بابا بول رہے ہیں, اور ڈائریکٹ بولتے ہیں. جیسے لوکک باپ سمجھاتے ہیں ویسے آج پار لوکک باپ بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں. پرنتو یہ بات کوئی کی بدھی میں تھوڑے ہی آتی ہے. اگر یہ بات بدھی میں قاعدے سے رہے کہ باپ ہم کو پڑھاتے ہیں تو سارا دن خوشی کا پارا چڑھا رہے. اجان کال میں سارا دن پارا رہتا ہے خوشی کا. اسٹوڈینٹ لائف میں بھی بچوں کو نشہ رہتا ہے. ہم یہ اونچی پڑھائی پڑھتے ہیں اور فلانا ماسٹر ہم کو پڑھاتے. ماسٹر کو کون یاد نہیں کریں گے؟ پرنتو یہاں دیکھو, تین فل پاور ہیں, وہی بابا, وہی ٹیچر, وہی سدگرو. ان کو تو تین گنا یاد کرنا چاہیے, بلکہ اب 300 گنا جاستی یاد کرنا چاہیے. پرنتو اہو مما مایا یاد کرنے ہی نہیں دیتی ہے, دھارنا کرنے ہی نہیں دیتی ہے. نہیں تو ہے بہت سہج بٹھی, سمجھانا ہے. ایک ایک پوائنٹ کو ابھی اتنا اچھی طرح سے بیٹھ کر کے وچار کریں اور کوئی کو بھی بیٹھ کر کے سمجھائیں, سمجھیں کہ ہم تو انوبھوی ہیں, ہم کو باپ ایسے کرم سکھاتے ہیں جو بھوشیہ میں ہم ایسے نہیں کہیں گے, یہ پاسٹ کا کرم ہم ان کو فالو آتے ہیں, آڑے آتے ہیں, اس لیے دکھ پاتے ہیں. تو یہ پوائنٹ بڑی اچھی تھی ایک دم. پرنتو جو سینسیبل ہوگا ان کو اچھی طرح بدھی میں بیٹھے گا اور وہ پہلے پہلے سمجھانے لگ پڑیں گے, کیونکہ جب بابا بیٹھ کر کے نئی باتیں بس سناتے ہیں تو بچوں کو نئی باتیں سنانی پڑتی تھی, اور یاد ہو تو سناوے نا. ایک ایک بات, ایک ایک گہی راج, یہ راج کس کو بھی اونچا اڑائے سکتے ہیں. یعنی نئے نئے بھی جو گیان لینے والے ہیں ان میں ایسی دھارنا ہونی چاہیے. ابھی دھارنا ہووے ہی تب جبکہ بابا سے یوگ ہو, بابا میں لب ہو, کیونکہ بابا میں تو لب چاہیے نا. یہ بابا پرانوں سے پیارا ہے, کیونکہ کس جنم جیو کے پرانوں کو جم گھنٹوں سے پکڑنے سے پھانسی سے چھڑاتے ہیں. وہ بابا بولتا ہے نا, کہتے ہیں آگے تو میں کال کو بھیج دیتا تھا, تمہاری اس آتما کو لے کر کے میرے پاس وہ گرو جیل میں آتا, وہاں ہی پھر ان کو سزا دیتا تھا. ابھی تو دیکھو میں ان کالوں کا کال ہوں, تمہارے پاس ستیوگ تریتا میں یہ کال کا نام نہیں ہوگا, یہ نام ابھی کا رکھا ہوا ہے. باقی آتما تو آپ ہی شریر چھوڑ کر کے دوسرا لے گی, یہ کوئی کال کو کھانے کی بات نہیں ہوتی ہے. آتما تو اجر ہمارا وناشی ہے, یہ تو بیٹھ کر کے سمجھایا ہے. وہ آتما آٹومیٹیکلی اپنا شریر چھوڑ کر کے گرو جیل میں جاتی ہے, اور ان کا جو پورا پورو جنم کا حساب کتاب ہے وہ بیٹھ کر کے چکتو کرتی ہے. وہ جیسے کہ دھرمراج ان کو سزا دیتا ہے, ابھی اس میں کال کی کوئی بات نہیں ہوتی. کال تو نام رکھ دیا ہے کہ کال آ کر کے ان کی آتما کو لے جاتے ہیں. شاستروں میں सावित्री और सत्यवान की जो बातें लिखी हैं ऐसी बातें हैं नहीं, ये तो बैठ करके बहुत बातें बनाई है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आत्मा कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ करके गर्भ में आती है, वो गर्भ जेल है, क्योंकि गर्भ जेल और गर्भ महल का भी दृष्टांत है। कहते हैं कि एक बैठा हुआ था, बाहर ही नहीं आते थे, समझते उनको तो आराम ही है, वहां उनको दुख होता है, बोलता है हमको बाहर निकालो। तो ये सभी बातें अभी समझाई जाती है। गर्भ जेल में दुख होता है, गर्भ महल में कोई दुख नहीं होता, तो है तो ये सही बातें ना, कुछ न कुछ शास्त्रों में सही बातें हैं, परंतु समझावे कौन कि गर्भ जेल कब है और गर्भ महल कब है। दिखलाया तो जरूर है कि पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आते हैं कृष्ण, और रख दिया है सागर का नाम, है तो ये गर्भ की बात। ये ज्ञान सागर का ज्ञान गर्भ है, पत्ते की बात नहीं है, हल्का फुल्का पुरुषार्थ करने वाली नवैया की बात है। और बिठैया है कृष्ण की आत्मा, जो आत्मा रूपी अंगूठे को चूसती है। तो बाप बैठ करके ये सभी बातें समझाते हैं, ये बाबा ने बात समझाई है, यहां तो सब बातें हैं ना, वो ही नई नई बातें समझा रहे हैं। परंतु ये बातें धारण भी हो और इनमें मैनर्स भी बड़ी अच्छी रखनी पड़ती है, वो स्कूल के मैनर्स अलग बात होते हैं और यहां तो ये पवित्रता के मैनर्स हैं, जो गाए जाते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, हमारा तो अहम ऑब्जेक्ट ही है ऐसा बनना, ऐसा बनना है तो सभी पांच विकारों से मुक्त होना पड़े, क्योंकि बहुत मीठा बनना है और हूबहू जैसे बाबा मीठा है, तो बाबा जब भी अच्छे अच्छे बैठ करके सुनाते हैं दिल में बहुत खुशी होती है, वाह बाबा वाह, ये पॉइंट तो ऐसी मिली जो किसको समझावे तो समझेंगे बरोबर सही है, बाबा हमको ऐसा कर्म सिखलाते हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति है ही गीता और भागवत में, परंतु एक ही ठोकर दे दी है, कौन सी, कृष्ण भगवान वाच कह दिया है, सारी गीता को खंडन कर दिया है। अभी अगर किसको ये बातें कहो तो बोलेंगे कृष्ण भी बोई है शिव भी बोई है, बोलते शंकर भी होते सो भी बोई, तो सराब व्यापी कह देते हैं। ऐसा कहने से फिर बात ही सारी खत्म हो जाती है। मीठी मीठी बच्ची है तो जाकर के कोई कोई भी समझावे। 18.3.63 की वाणी का सातवां पेश। सबसे अच्छा तो वानप्रस्थ वाले हैं, वो नहीं कहेंगे ये समझने की हमको फुर्सत नहीं है। तो क्यों नहीं वानप्रस्थ अवस्था में? देखो देहरादून में जो बाबा कहते थे वानप्रस्थ आश्रम बहुत जगह हैं, परंतु ढूंढे कौन? डायरेक्शंस तो मिलते हैं परंतु ढूंढते थोड़े ही हैं। कोई भी सेंटर जमाने के पहले तो ग्राहक देखना चाहिए कि यहां ग्राहक ऐसे मिलेंगे जिनको हम बैठ करके समझावे। उन ग्राहकों को समझने की फुर्सत है, बाकी तो धंधे में इतने चूर हैं। अजमेर में गए, वो चरिए खरिए मामे लोग होंगे, वो बेचारे रहे नहीं करनी, भले कोई साहूकार होते हैं, उनकी रहनी करनी ऐसी गंदी है। ऐसे गंदे होते हैं कि वहीं हगेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं किचन में जाएंगे। यहां है ये भीड़। अभी देखो वो कोई बाद में स्नान थोड़े ही करते हैं। ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के मनुष्य बहुत हैं जो स्नान ही नहीं करते हैं। हगन हट्टी करके ऑफिस में आएंगे, अब वहां अंदर तो जाएंगे ही, ऑफिस में आकर के बैठ जाएंगे, खाएंगे, फिर घर में जाएंगे। उनको कोई स्नान की बात थोड़ी होती है। तो ढेर के ढेर ऐसे होते हैं, वहां स्कूल में भी बहुत ही जाते हैं, कोई स्नान पानी थोड़े ही करते हैं, जाते रहते हैं। यहां तो देखो कितनी परहेज है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितना जब्त है कि चले आए हो यहां फिरो नहीं, भले अभी तक भी यहां कुछ ऐसे हैं, नहीं तो कायदा है कि वहां जावे स्नान करके पीछे आवे। कहीं कहीं जो वैष्णव होते हैं वो करते हैं, तो भी वो जैनम डाल देते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं कि वो अपवित्र पवित्र हो जावे। वहां बाबा भी खुदा करते आते थे, अपवित्र पवित्र हो जावे, इसलिए वहां छिट्टा डाल देते थे, थोड़ी सी स्नानी कर देते हैं। अभी वो कहां है बात मत पूछो। आजकल तो विलायत से होकर के जो आते हैं वो तो बस, उनकी तो बात ही मत पूछो। چرخہ بھی دیکھو کتنا فیشن نکلا ہے. جو بھی تھوڑی نیتکتا میں رہیں, فیشن ناٹک ان میں جانے سے ہی ان میں انیتکتا کے سنسکار آ جاتے ہیں. بس اسی میں دیکھو سب خوش ہو جاتے ہیں. دلی میں بہت گانے بجانے سنتے رہتے تھے, دلی میں جاؤ تو جو بھی بڑے بڑے ایم پی آدھے ہیں سب کو گانے کا شوق, سب کو فیشن کا شوق. بس ان باتوں میں ہی خوش رہتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں ابھی ہم بلایت جیسے ہو گئے ہیں, اس لیے سمجھتے ہیں کہ واہ ابھی دیکھو ہمارا بھارت تو جیسے پرستان بن گیا, پرنتو ان بیچاروں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ابھی یہ پرستان تمہارا قبرستان ہونے والا ہے. کتنا اپنے کو خیال رہے گا, یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ ابھی بمب چھوٹ جاوے, چھوٹیں گے تو ضرور. دیکھتے ہیں کتنی اچھی ہے, کتنی فیشنیبل ہے, کتنی دھنوان ہے, کتنے بڑے بڑے محل میں رہتے ہیں. آج رہتے ہیں کل ہوں گے ہی نہیں. اب بتاؤ اس سمے میں ان کا کیا حل ہو جائے گا. یہ تو ہم جانتے ہیں, دنیا میں تو ان باتوں کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. نہیں جانتے ہیں کہ ابھی بامبس گریں گے, جو وہ تو مایا کے اندھے میں ہیں. سمجھتے ہیں وہ بھی اندھے میں ہیں. تو کتنی کتنی اچھی ہیں آتی ہیں, کتنی نفیس, کتنی نازک, اور آ جائیں گے کیسے. بھارت میں ایسے ہی جب کچھ بھی ہوگا, یہ دیکھو بامبس کیسی اچھی بنی ہے. بابا جب بامبے میں جاتے ہیں تو وچار آتا ہے کیا میرے ہوتے یہ بامب ہوگا. بامب بھی ہوگا یہ بامبے بھی ہوگی کیا. یا نہیں ہوگی. بابا ایسے کہتے ہیں کب ہوگی, پرنتو ہوگی بھی, کچھ تو آگے ہوگی ضرور. یہ بامبے ایسی فرسٹ کلاس, اس کا کیا حال ہوگا اس سمے میں جب بامبس پٹیں گے, جبکہ یہ ارتھ کویک ہوں گے, نیچرل کیلامٹیز ہوگی, یہ ساگر تھوڑا سا اتھل کھاوے گا. ایسے ایسے اتھل کھاتے ہیں. ابھی بھی کہاں کہاں سننے میں آتا ہے, کہاں کہاں تو وہ ساگر چڑھ جاتے ہیں, ڈبو دیتے ہیں. پھر اس سمے میں ان کا کیا حال ہوگا. ہم تو ابھی جانتے ہیں کہ حال ہونے والا ہے. ہم جانتے ہیں جو اچھے اچھے بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب جانا ہوگا ہم کو پہلے سے ہی آنا ہوگا. جیسے کہ ہم انکانشیس ہوتے ہیں اور ہم سمجھ جائیں گے کہ شریر چھوڑ دیتے ہیں,
اچھا ہم کو تو بہت فرسٹ کلاس شریر ملنے کا ہے. دیکھو یہ سب جان کی باتیں ہیں, پرنتو یہ باتیں سب کے لیے نہیں ہیں. سب کو تو بیماریاں بھی ہوں گی, ایک دم ڈر کے مارے مر جائیں گے. بیماری میں بھی جو پکی اوستھا والے ہوں گے وہ جائیں گے اور کہیں گے ہم کو کیا حرج ہے, ہم نے تو کمائی جو کرنی تھی وہ کر ہی لی, ہم شریر چھوڑیں گے اور ہم کو اچھا شریر ملے گا. اگر جانا بھی ہے تو اچھا ہی کرے گا, کیونکہ ہم نے تو بہت اچھی کمائی کر لی, تو ہم جا کر کے نئی دنیا میں بھوگیں گے, جا کر کے اونچا پد پاویں گے. ہاں یہ ضرور ہے جو بالکل اچھے اچھے ہیں وہ تو رہیں گے ہی, پرنتو یہ تو خوشی رہتی ہے نا, بدھی میں ان کے اچھا بیٹھے گا, وہ آئیں گے بھی ایسے ہی انکانشس کے موافق. ابھی ہم جاتے ہیں, چلو چھوڑو اس شریر کو. ایسے بہت سادھو سنیاسی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سمجھتے ہیں کہ شریر چھوڑنے کا ہے. پھر کبھی کسی کا شریر چھوٹ جاتا ہے, کسی کا رہ جاتا ہے. ایسے بابا نے بہت پڑھا ہے اور بہت سنا ہے, 18:363 کی وانی کا 8th پیج. یہاں تو جو اچھے اچھے بچے ہیں وہ جب بیٹھیں گے اور اتنا یاد میں ہوں گے, ان کی بدھی کا یوگ ٹھیک لگا ہوگا تو ان کا شہر سکھ کا پارا ہی چڑھ جائے گا, خوشی کا پارا چڑھ جائے گا, اور کہیں گے ابھی ہم خوشی خوشی یہ شریر چھوڑتے ہیں, ابھی ہم نے محنت کر لی ہے, جا کر کے ضرور کوئی راجہ کے پاس جنم لیں گے. جاتے ہیں فلانا راجہ کے پاس, بابا نے بتایا فلانا گیا تو جا کر کے جموں کے راجہ کے پاس جنم لیے, تو اچھی بات ہے نا, وہاں جا کر کے بھی تو ہم کچھ کام کریں گے نا. بھلے ہمارا آرگن چھوٹا ہوگا پھر بھی ہمارے گن تو اچھے ہوں گے نا, گنوں کی بھی بہت چھوٹے پن میں پہچان ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا لالنا کے پاؤں پالنا میں معلوم پڑ جاتے. آگے ہیمراج تھا چداکاشی کا, وہ تو چھوٹا تھا کھیل کرتا تھا, ان کے اوپر ایسے پھڑ کر کے سرپ آتا تھا, ایسے ایسے کرتا تھا, تو ایسے ایسے مہما کرتے تھے تو ہم بھی جانتے ہیں کہ میں ایسے جاتے ہیں جو ہمارا کہاں بھی ایسا حساب نہیں ہوگا. ہماری چلن اس سمے میں اس گھر میں بڑی فرسٹ کلاس ہوگی, کیونکہ گیان کی پراکاشٹا ہوتی ہے. और पवित्र बनने वाले, ये भी तो बुद्धि में आता है ना। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, कहां भी जाएंगे तो जहां जाएंगे उनको सुख देंगे। तो हम जो इतना सतयुगी संस्कार ले जाते हैं, जिसके भी घर में जावेंगे उनको हम कितना सुख देते होंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ा सुख देते हैं, कई तो ऐसे होते हैं कि हैरान हैरान कर देते हैं। रो रो करके एकदम रोगी बन जाते हैं, और कोई तो बड़े फूल के माफिक खुशनुमा रहते हैं। हम तो जानते हैं कि कृष्ण की कितनी महिमा है, तो हमारी कितनी महिमा होगी जब हम कहां जन्म लेंगे। मां को भी दर्द नहीं देंगे, आवाज ही नहीं करेंगे, बिल्कुल रोएंगे पीटेंगे नहीं, और रोगी भी नहीं बनेंगे। ये तो हम समझते हैं ना, परंतु ये भी कौन समझते होंगे, जो जो बच्चे अभी अच्छे से सर्विस में लगे होंगे। बाकी बुद्धू लोग थोड़े ही समझते होंगे। ये सभी बातें हैं सोचने और समझने की, विचार सागर मंथन करने की। बाकी तो जाकर के भाषण करना है, ये भी सीखने का हुनर होता है, कर लेते हैं। परंतु अंदरूनी पक्की अवस्था चाहिए, आवाज करने वाला या भाषण करने वाला, सिर्फ बाहर का बोलने वाला नहीं चाहिए। ऐसे बाबा के पास बहुत है, भाषण तो बहुत अच्छा करती है, और अंदर में देखो तो कपड़ धूल भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी है। अच्छा चलो बच्ची टोली लेकर आओ, पहले पहले मेल्स को दे करके आओ, जो आईसीएस पढ़ते हैं उनको बड़ा नसीब वाला कहा जाता है। तुम यहां जो पीसीपीटीसी कॉलेज है उसमें जाओ तो देखो उन पढ़ने वालों को कितना नशा होगा। वो जानते हैं कि हम जाकर के सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, जैसे बादशाही मिल जाती है। आजकल पुलिस में नौकरी भी एक बादशाही है, सबसे जास्ती बादशाही ऑफिसर्स की होती है। चलो पुलिस का कोई नाम बदनाम ना करे, कोई भी बड़ा आदमी होता है तो उनके ऊपर भी छांटा डाल देते हैं। मैंने अखबार में भी तो पढ़ा था, अल्लाहाबाद का जस्टिस मुल्ला, उसने कोई पुलिस वालों को देखा कि इसने तो बड़ा जुल्म किया है, तो उसने लिख दिया कि ये पुलिस तो जैसे कि बहुत खतरनाक है। हजाम है, यानी कि उनके ऊपर छांटा डाल दिया। तो जैसे कि सभी पुलिस के ऊपर आ गया कि पुलिस में बहुत नॉनसेंस लोग हैं, पुलिस में ऐसे हैं तो सभी के ऊपर आ जाए ना, तो बैठ करके उनका आवाज निकला, ये तो एक के बदले में सारी पुलिस के ऊपर कलंक लगाई दिया। तो उसने स्पीच की और भी कुछ कहा था, कोई से तंग हुआ था, ऐसे पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। किसी ने कहा ये तो जैसे बदमाशों की टोली होती है, हाँ ऐसे ऐसे अक्षर भी उसने कहे थे, तो सारी पुलिस का नाम ले लिया। पर्टिकुलर तो कुछ नहीं किया, फिर उनकी स्पीच निकली, ऐतराज उठाया गया, फिर बड़े जज ने जजमेंट में से वो अक्षर निकलवाई दिया। दादा आज सोमवार है, बाबा कहते हैं सोमवार और बृहस्पतिवार हैं तो सभी दिन अपने लिए, बाबा यहां है तो पीछे क्या है, हमारे तो जैसे सभी शिव बाबा के दिन हैं, रोज पढ़ाते हैं ना, फिर भी ये भोग तो लगाते हैं ना, कोई शिव का सोमवार के दिन लगाते हैं, कोई मंगल के दिन, कोई बुध, सबका कोई एक जैसा ठिकाना तो नहीं है, फिर भी बाबा कहते हैं अच्छा शिव बाबा और दादा और ये मीठी मम्मा का मीठे मीठे से किले नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार यतायु के बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग ओम शांति। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो तीन गुणों के स्वभाव से सारी दुनिया चल रही है, हर आत्मा में हर एक सृष्टि के कण कण में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो कण जहां से शुरुआत होता है घूमते 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 वहीं जाकर के पहुंच जाता है, ये पार्ट एक एक कण में नुधा हुआ है, एक एक आत्मा में भी वो पार्ट नुधा हुआ है, तो किसको दोष देंगे, जगदम्बा को दोष देंगे, कहेंगे कि जगदम्बा दोषी है, कहेंगे नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है, है?
किसी आत्मा के द्वारा नहीं उसे बदल सकती है
क्या,
कोई आत्मा करने के लिए आएगी तो
हर आत्मा का पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमने पाप किया है तो हम ही भोग रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमको नीचे गिराने वाला वो है, नहीं, हमको नीचे गिराने वाले या ऊंचे उठाने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। संगम युग में शूटिंग हो रही है
बाबा, अयोध्या में जो मंदिर है वह अयोध्या में राम का मंदिर है व रहीम का है, वो दुनिया वाले की दादा मछली बिन गया, वो राम का भी मंदिर बनता नहीं और रहीम का भी मंदिर बनता नहीं, ऐसा क्यों?
मथुरा में वहीं पर कृष्ण की जन्मभूमि है और उसी दीवार से लगी हुई मस्जिद बनी हुई है। अयोध्या में वहीं पर राम का मंदिर और वहीं पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है। ये दुनिया का खेल ही ऐसा है। सबके ऊपर आता है क्या समझाने के लिए समझाया जाता है कि भाई देखो ये इनका चित्र बना हुआ है, ये पैरवाइश खास किस व्यक्ति की है, वो चित्र दिखा के बताया जाता है। उस चित्र में जो पुराना चित्र है 30x40 इंच का बाबा का बनाया हुआ, उसमें शेरवानी दिखाई गई है, चूड़ीदार पैजामा दिखाया गया है और सर पर टोपी दिखाई गई है। ये पैरवाइश ब्रह्मा कुमारों में कौन से ब्रह्मा कुमारों की दिखाई गई ज्ञानमत्र पत्रिका में? फोटो तो ब्रह्मा कुमारों के बहुत है या नहीं? तो कौन सा ब्रह्मा कुमार है जो इस वेशभूषा में दिखाया गया है जगह जगह है? अरे कोई है या नहीं है? कौन है? है बुजमोहन नहीं? हाँ, तो जिसका फोटो दिखाया गया उसे आराम से समझाया जा सकता है।
कितने पॉइंट आए हैं इस समय? विशेष आत्माएं जस्टिस के रूप में है, तो ये जस्टिस के रूप में कौन आत्मा है?
जस्टिस का काम होता है ये राइट ये रंग। तो अब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वालों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि भगवान कौन, परमात्मा कौन, महात्मा कौन, देवात्माएं नंबर वार कौन कौन? ये प्रश्न आया या नहीं आया? और इस प्रश्न को जज करो, जजमेंट दो, कौन है भगवान? तो बाबा की नजर में आप बच्चे हो जजमेंट करने वाले। जज जो खुद जज करेगा वो ही दूसरों को सुना सकेगा अपना जजमेंट। खुद ही जजमेंट नहीं कर पाएगा तो दूसरों को सुनाए भी नहीं सकता।
अब हिम्मत ले सकते हैं ना, बाबा तो जज ही दे।
किससे श्रीमत लेंगे?
बाबा से।
बाबा से? अब बाबा कौन, यही तो एक प्रश्न है। पहले पता तो लगे कि असली बाबा है कौन। बाबा माने भगवान। तुमने कैसे जान लिया ये बाबा है? क्या ज्ञान है तुम्हारा? वो बताओ, वो बताओ ना, क्या ज्ञान है तुम्हारा कि ये बाबा है?
हरे सवाल का जवाब बाबा देते हैं।
हरे सवालों का जवाब तो आज के दुनिया के गुरु भी दे देते हैं। दिल्ली में एक बैठा हुआ है बाबा, सर्व समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पधारे, फोन नंबर दिया हुआ। तो बात हो तुम कभी नहीं गए?
क्लैरिफिकेशन भी बाबा देते हैं।
मुरली मुरला क्या होता है? बाबा ने कोई मुरली में नहीं बोला, एक ही बच्चा निकलता है, उसका नाम ये है, उसका रूप ये है, उसका गांव ये है, ये बाबा ने किसी मुरली में नहीं बताया। गॉड इज वन, तो वो वन कौन है? यही तो प्रश्न है, इसी को तो जजमेंट देना है। और अरे बाबा के आते ही रहे वो बोलोगे। हाँ,
एक आत्मा को अगर सकार देना है तो टॉर्च जैसा उस पर ये करना है, रिफ्लेक्टर जैसा आपको ये करना है, तो और विश्व कल्याण का जब संकल्प करना है
तो जो विश्व का बाप है उसको टॉर्च दो, दे दान तो छूटे ग्रहण।
बाप को दान देना।
अरे भक्ति मार्ग में जब ग्रहण लगता है तो बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं, क्या चिल्लाते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण, तो किसको दान देना है? अरे दान देना है या नहीं देना है, किसको देना है बताओ? अरे भक्ति मार्ग में जो बातें हैं कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में विकारों का ग्रहण किसको लगा हुआ है?
सारे आत्माओं को, सारे आत्माओं को।
अरे अव्वल नंबर में किसको लगा हुआ है? राम बली आत्मा को लगा हुआ है। एक तरफ कहते हैं सूर्य का पार्ट है और दूसरी तरफ कहते हैं राम वाली आत्मा जिसका सूर्य का पार्ट है उसको विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। पत्थर बुद्धि। दो दो बातें कैसे साबित हो जाएंगी? अरे बात एक साबित होगी या दो बातें साबित होंगी? राम जो है वो हर युग में रावण बनता है या सिर्फ जब दुनिया का अंत होता है तब रावण बनता है? तो फिर ग्रहण तो अभी लगा हुआ है तो वो ग्रहण किसको लगता है विकारों का? जगदम्बा को ग्रहण लगता है या जगदप्पा को ग्रहण लगता है? एक तरफ कहते हो जगदप्पा में शिवप्पा प्रवेश है और दूसरी तरफ कहते हो कि जगदप्पा को ग्रहण लगता है। ये दोनों बातें कैसे साबित होंगी?
जगदप्पा पे शिव ग्रहण होता है,
है?
जगदप्पा पे शिव अवतरित होता है, ऐसा कब बोला?
जगत पिता में जो जगत पिता है प्रजापिता है उसमें शिव नहीं आता है, ये साबित कर रहे हैं आप मुरली के आधार पर? बहुत अच्छी मुरलियां सुनी है आपने, पढ़ी है।
जगत पिता में तो शिव अवतरित होता है ना?
अब दूसरी बात पलट गए।
ये वही बोल रहे ना बाबा,
अभी कह रहे हो कि कैसे साबित हो?
अरे परिचय देते हैं, बादशाह करने आया है, बादशाह करने
है?
है? अरे कृष्ण परिचय देते ना,
बादशाह करने
आया है, प्रत्यक्ष आया है।
हाँ,
देने आया है।
हाँ,
परिचय तो हम देते ना बीते वाले।
वो देते तो है, देने वाले जो लेने वाले वो लेते हैं। गेंगे गेंगे जब गेंगे के तो हम मानेंगे।
अरे हमने भी तो लिया ना, आपको भी किसी ने बताया तो हमने माना ना।
तो आप तो जैसा जो बताए वैसे चलने वाले हैं, आप तो अंधश्रद्धा के ऊपर चलने वाले हैं। आप साबित ही नहीं कर सकते संसार के सामने कि अमुक व्यक्ति के अंदर शिव बाबा आया हुआ है।
साबित कर रहे हैं ना बाबा,
साबित कर रहे हैं। तो जो बात प्रूफ सहित बताई जाएगी वो दुनिया को माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी।
नंबर वन मानते हैं ना बाबा?
सारी दुनिया माने।
उनको समय है,
क्षमा तो क्षमा ने किया कि आपने किया? किसको? ओ साइंस बोलती है, तुम नहीं बोलते हो, तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो जब बुद्धि बोलती है तो साइंस का नाम क्यों लेते हो? अभी तो बुद्धि में ये बात बैठ गई ना कि सूर्य एक तरफ है, बीच में चंद्रमा आ जाता है और धरती अलग है, तो धरती पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जिस पोर्शन के जिस पर चंद्रमा का परछाया पड़ता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा और चंद्रमा का परछाया पड़ा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर रहने वाले जो परछाए में आए हुए लोग हैं, वो समझते हैं कि सूर्य छुप गया। अब इससे साबित होता है कि चंद्रमा परछाए में आया है, चंद्रमा के आधार पर पृथ्वी पर रहने वाले लोग परछाई के अंदर आए हैं, उनको सूरज नहीं दिखाई पड़ता है, बाकी पृथ्वी के दूसरे हिस्सों पर सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो कहें कि सूर्य को ग्रहण लगा, बस अभी तो हमारी बुद्धि में बैठ गया कि सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लगता, सूर्य कभी परछाई में नहीं आता, हाँ चंद्रमा, चंद्रमा परछाई में आता है। तो चंद्रमा अंधेरे में आता है, सूर्य अंधेरे में नहीं आता। चंद्रमा पृथ्वी के प्रभाव में आता है, सूर्य प्रभाव में नहीं आता पृथ्वी के। ऐसे ही यहां है ज्ञान में। जो दिखाते हैं वो बुद्धू है, शास्त्रकार, उनको समझाना है कि सूर्य ग्रहण जिसे कहते हो वो वास्तव में क्या बात है। उनको चित्र बनाकर दिखाओ, एटलस दिखाओ, एटलस में वो चित्र दिया हुआ है कि बीच में किस तरह चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ पृथ्वी। तो सूर्य का परछाया चंद्रमा पर, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा, चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर पड़ा। तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर चंद्रमा का परछाया पड़ता है, उन लोगों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, वो समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में है, सूर्य को अंधेरे ने ग्रस लिया।
सूर्य को नहीं ग्रस लिया, लेकिन जो पृथ्वी के वासी है, जो चंद्रमा से प्रभावित है, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से प्रभावित होने के कारण सूर्य को नहीं देख पाते। अभी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो आत्मा समझे बैठी है, मैं गीता का भगवान साकार में कृष्ण हूँ, वो अंधेरे में है, तो उसको फॉलो करने वाले सब अंधेरे में,
उसको शांति कराना।
हाँ जी,
पता नहीं करना है, वो बोलते हैं बोले हमारे आश्रम नीचे का तुमको
है,
वो उनको बताना, तो वो क्या बोलते हैं हमारे
है। सौ बातों की एक बात, जो गद्दी नशीन बने बैठे हैं उनके लिए मुरली में डायरेक्शन है, गद्दी नशीनों को ज्ञान नहीं सुनाना है, उनके चेलों को सुनाओ। वो चेले जब टूट जाएंगे तो वो गुरु लोग खुद ही नाक लटका कर तुम्हारे पास आ
वही बात होती है। उनके चेलों को जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो जो मना गद्दी नशीन होते हैं ना, वो कहते हैं आपको हमारे ही चेले नजर आते हैं,
गद्दी नशीनों के पास जाना ही नहीं,
नहीं जाते ही नहीं है,
तो कहेंगे कहाँ से पहुंचे,
कहीं ना कहीं मुकाबला हो जाता है।
ये जो सेमय नजर आते
हैं,
सेमय नजर आते हैं जब सुरेखा जाए,
छह महीने की रात होती है, उत्तर ध्रुव का शुक्र ग्रह है,
हाँ हाँ,
तो उस समय सूरज कहा
जाता है, बोले वो टाइम, वो टाइम सूरज कहा जाता है।
अरे पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, धुरी घूम रही है, ऐसी 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 झुकी हुई घूम रही, झुकी है ना, उधर सूर्य है, तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये समझो सूर्य है, और पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, तो सूर्य से ये हिस्सा अभी दूर पड़ जाएगा ना, पड़ेगा ना, तो इस हिस्से में रात हो जाएगी कि नहीं? वो छह महीने लगातार रात रहेगी जब तक पृथ्वी इस तरफ है। जब पृथ्वी छह महीने के बाद घूमते 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 फिर ऐसी आएगी, ये सूर्य यहाँ पर है, ये सूर्य यहाँ पर है और पृथ्वी ऐसी आ गई, तो ये हिस्सा इसके सामने आ गया ना, तो छह दिन का, छह महीने के दिन हो गए। ये झुकी हुई पृथ्वी की धुरी ये दोनों कार्य कराती, उत्तर ही ध्रुव पर है, छह महीने का दिन भी होता है छह महीने की, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव पर भी छह महीने का दिन और छह महीने की रात भी होगी। एक ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया में एटम बमों के जब ढेर पटाखे इकट्ठे होंगे, जैसे दीपावली पर फटाखे छुटाते छुटाते आखिर में क्या करते, सारे फटाखे एक साथ छुटा देते, तो ऐसे ही सारी एटमिक एनर्जी जब फट पड़ेगी तो पृथ्वी का बैलेंस बोल जाएगा, और हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में भूकंप फट पड़ेगा। वो भूकंप फटने से पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और इधर बैलेंस बिगड़ने के कारण पृथ्वी का जो चक्र है वो भी बिगड़ेगा, और सारे ग्रह आपस में टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, ये चंद्रमा अपने आप में आके गोद में आके समा जाएगा।
साउथ पोल नॉर्थ पोल भी
जो साउथ पोल नॉर्थ पोल जो झुके हुए धुरी है वो भारत की तरफ सीधी हो जाएगी। अब जब लगातार सीधी है 2500 साल तक सीधी बनी रहेगी तो सूर्य के सामने रहेगी,
रात होगी।
ओम शांति।